ओम शांति। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी, विगत 50 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रही हैं। आप 50 वर्ष पूर्व बाबा की चुने हुए रत्न बने और तभी से लेकर आप विश्वव्यापी सेवाओं में समर्पित हैं। आपने देश विदेश में भारतवर्ष के कई स्थानों पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी आपने इंडोनेशिया, हांगकांग, अफ्रीका आदि देशों में अपनी सेवाएं दी। आप प्रखर कुशल वक्ता हैं, हर विषय पर आपकी गहरी पैठ है। आप शांतिवन में जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, चाहे भट्टी के चाहे ट्रेनिंग के, उनका आप कोऑर्डिनेट करती हैं। आप प्रभागों में नेशनल कोऑर्डिनेट हैं महिला प्रभाग की। ऐसी महान विभूति, महान आत्मा का हम निवेदन करते हैं कि इस योग भट्टी के अंदर हमें ज्वालामुखी, ज्वाला स्वरूप की याद हम कैसे अपनी कायम करें, उसके लिए हमें मार्गदर्शन दें, प्रकाश प्रदान करें। आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी,
ओम शांति। ब्रह्मा बाप और मीठी मम्मा की साथ साथ हमारी दादियों की ये तपस्वी भूमि, जिस भूमि की तपस्या के वाइब्रेशंस हर आत्मा को खींचते हैं, जो यहां आने के साथ ही एक गहरी साइलेंस, न सिर्फ साइलेंस परंतु इस पांच तत्वों की देह से भी सहज डिटैच हो जाते हैं। संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है, समझती हूं आप सब भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। और वो तपस्या का बल स्वयं में भर रहे होंगे। जो बाप दादा कहते हैं, कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट चाहिए। आपका तो यहां मैं समझती हूं 16 घंटा याद का चार्ट होगा, क्योंकि एक ही काम, एक ही लक्ष्य है और उसी पर फोकस है। इसी संकल्प और सोच से आए हैं, तपस्या करनी है। तप का बल जमा करना है। और जो बाबा बार बार हम सभी को कहते, याद का रूप ज्वाला का चाहिए और वही ज्वाला स्वरूप की याद हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करने वाली है। वही ज्वाला स्वरूप की याद मुझ आत्मा की टोटल ओवरहॉलिंग, पूरा मुझ आत्मा को रिजुवनेट करने वाली है। परंतु वो ज्वाला स्वरूप की याद क्या है, वो हम अपने सामने पहले स्पष्ट करें कि वो ज्वाला स्वरूप की याद को विजुलाइज करें तो वो याद कौन सी है। जिसको कहते ज्वाला स्वरूप की याद। विजुलाइज कर सकते किसको कहते, किसको कहते बीज रूप स्थिति कंबाइंड स्वरूप और जी निरंतर बाप की याद, लवलीन। किसने ज्वाला देवी का मंदिर देखा है? 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे हाथ पड़ रहे। कहाँ है? धर्मशाला में है। ज्वाला देवी का मंदिर धर्मशाला में है, पठानकोट से आगे। और उस ज्वाला देवी मंदिर की जो यादगार है, वहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी नहीं है, सिर्फ धरती से एक ज्वाला अखंड जलती रहती है। आज कितने ही वर्ष हो गए हैं उस ज्वाला को अखंड जलते हुए। कोई उसमें घी नहीं डालता, कोई तेल नहीं डालता, लेकिन वो धरती से ही प्रकट हुई है। हो सकता है कुछ केमिकल्स हैं, कुछ गैसेस धरती के नीचे होंगी जो उसको निरंतर प्रज्वलित की हुई है। ऐसी मुझ आत्मा की अखंड आत्मा की ज्योति, आत्मा की स्मृति निरंतर है। दूसरा ज्वालामुखी पर्वत है। सुनते होंगे समाचारों में ज्वालामुखी फटा। अभी पिछले दिनों अमेरिका में हवाई में फटा था और समय प्रति समय ज्वालामुखी पर्वत फटते हैं। और जब वो ज्वालामुखी पर्वत फटता है, उसके अंदर जो शक्तिशाली गैसेस निकलती है, लावा निकलता है, उसकी जो अग्नि है इतनी प्रचंड है, उसका असर माइलों तक के घेराव को ऐसा तहस नहस कर देता है जो हजारों वर्षों तक उस जमीन पर एक इतना सा पौधा भी नहीं निकल सकता है। ऐसी धरती को बंजर कर देता है वो ज्वाला का प्रभाव है। तो बाबा कहते ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करें जो आधा कल्प के लिए पुराने स्वभाव संस्कार और आधा कल्प के विकर्म ऐसे भस्म हो जाएं जो आधा कल्प तक उसका नाम निशान ना रहे। ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए और उस ज्वाला स्वरूप की याद के लिए सारा दिन भर की दिनचर्या, जिसमें रात को अंडरलाइन कराती हूं, बाबा के सामने अपने सारे मन और बुद्धि को धर्मराज बाबा को सुनाकर उसको खाली कर दो। कुछ भी अंश सारा दिन का यहां ना रहे, क्योंकि अभी तो बाप का रूप है, सजा नहीं देगा, माफ कर देगा। लेकिन जब उसका स्वरूप धर्मराज का होगा तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। यहां बैठी हूं, बोलते बोलते एक दृश्य सामने आया, ओम शांति भवन भी नहीं था, बाबा यहां ही आते थे। कितने बैठ सकते हैं इस हॉल में आप गिनती कर सकते हैं, सोफा चेयर्स नहीं, सिर्फ नीचे 500 से ज्यादा नहीं। उस दिन बाबा का रूप बिल्कुल धर्मराज, इस चादर पर अगर सुई भी गिर जाती तो उसकी भी आवाज आती कि सुई गिरी। वो बाबा का स्वरूप था, सामने देख ही नहीं सकते थे। और अगर वो मुरली याद करूं तो आप सबको याद आएगी जिसमें बाबा ने कहा था, खून करते हैं, हत्या करते हैं, विष वाले सांप को डसते हैं, कूड़े की टोकरी उठाते हैं, वो सारी ही मुरली ये थी। ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस, जो कोई काटे ना तो खून भी ना निकले। सामने देखना तो दूर, और उस मुरली में बाबा ने याद प्यार भी नहीं दिया, भोग भी स्वीकार नहीं किया। मुरली के बाद दीदी मनमोहिनी बाबा को शहद का वम पानी पिलाती थी, बाबा ने सिर्फ वो जल पिया और चला गया। और दूसरी फिर उस समय बाबा एक दिन छोड़ के एक दिन आते थे, दो दिन तक तो बहुत हलचल कि जरूर कोई ऐसे आए हुए हैं जो बाबा की ऐसी धर्मराज की स्ट्रांग मुरली चली। एक दिन के बाद जब फिर बाबा आए, उस दिन बाबा का रूप इतना रमणीक जो बाबा आते ही कहते, पिछली बार हाई डोज मिला था ना, और बाबा ने सबको लाइट कर दिया। अपने आप से मैं पूछूं, इतनी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद का अनुभव है तो रात को अपना सारा मन और बुद्धि ऐसा ब्लैंक कर दें जो धर्मराज की सजा से मुक्त हो जाए। तो वो योग क्या है? तपस्या तो बाद की बात है, याद क्या है? प्रेम बेन देहरादून जानते होंगे, बाबा के पास बैठी थी, बाबा ने तरबूज काटा था और सबको दिया, खा रहे थे, नहीं, कभी खाते खाते जीभ दांत के नीचे आ जाती है, ऐसे ही आ गई। बाबू ने फट से कहा, बच्ची तुम्हारा योग नहीं है। तुम्हारा योग नहीं है, इतना अटेंशन स्वयं पर है, ये गफलत भी क्यों हुई? तो सबसे पहले अमृत वेले से लेके रात तक पहली धारणा आत्म अभिमानी स्थिति निरंतर और निरंतर चाहिए। अशरीरी विदेही की प्रैक्टिस चाहिए। तीसरा, सारथी का अभ्यास चाहिए। सारथी का अभ्यास माना करावन हार, बाबा करा रहा है और आत्मा, करण हार कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है। इस रथ का सारथी बाबा है। चौथी बात, साथी और साक्षी दृष्टा। हर सेकंड प्रैक्टिकल स्वरूप में इमर्ज हो, एक सेकंड भी शिव बाप मेरे से अलग नहीं हो, तो हर सेकंड साक्षी दृष्टा की स्थिति रहेगी। साक्षी दृष्टा की स्थिति अर्थात कितनी भी बातें सामने आ जाएं, कितनी हलचले आ जाएं, कितने तूफान आ जाएं, कितना ऊपर नीचे हो जाएं, कितनी हलचले आ जाएं, डिटैच साक्षी होकर के उसको देखते रहे, उसका प्रभाव मेरे ऊपर, मेरी स्थिति पर, मेरे विचारों पर, मेरे व्यवहार पर ना पड़े। इतने साक्षी और डिटैच, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जब सन्मुख सुनते हैं, हॉल में सब भाई बहन बैठे हुए हैं, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई बाजू में कोई हलचल करता है, ध्यान सब तरफ चला जाता है, संकल्प आ जाता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। बाप दादा सामने अपनी मुरली चला रहे हैं, सब हलचलों से परे डिटैच साक्षी हैं। बाप दादा से स्टेज पर मिलते हैं, हलचल बहुत हो रही है चारों तरफ, बाबा बड़े प्यार से सबको वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। उस सारे उठने बैठने हलचल का बाबा के ऊपर कोई असर नहीं। ऐसी साक्षी दृष्टा की स्थिति मुझ आत्मा की है। छठी बात, न्यारी और प्यारी जितना बाबा से सर्व संबंधों का प्यार, सर्व संबंधों की प्राप्ति की अनुभूति में रहेंगे, उतने प्यारे और सर्व से न्यारे रहेंगे। तो आत्मा सदा उस प्यार के सागर में डूबी हुई हो, सदा प्यार का झरना बोल से, व्यवहार से, दृष्टि से महसूस हो। ऐसे एक के प्यार में खोई हुई स्थिति हो। आठवीं बात, संकल्पों पर पावरफुल ब्रेक, जिसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। भाइयों को तो अनुभव है, व्हीकल्स चलाते हैं, आप ब्रेक यहां लगाएं और वहां जाके गाड़ी खड़ी हो तो क्या होगा, क्या होगा? एक्सीडेंट। यहां ब्रेक लगाई तो यहां ही गाड़ी स्टॉप होनी चाहिए, ऐसी पावर ब्रेक। संकल्प स्टॉप मीन्स स्टॉप, सेकंड भी नहीं लगे। सेवा का संकल्प भी मर्ज हो जाए, एक ही संकल्प में स्थित। सारा दिन, आठवीं बात, सारा दिन लाइट और माइट स्वरूप की स्थिति, ज्ञान की, नॉलेज की जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स बाबा ने दी, उसका स्वरूप का अनुभव और उस ज्ञान से क्या शक्ति मिलती है, उन शक्तियों के माइट स्वरूप हो। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो लाइट देता है, प्रकाश देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सूर्य की जो लाइट है वो तीव्र होती जाती है और वो लाइट माइट बन जाती है, जो माइट सोलर पावर है, एनर्जी बन जाती है। तो ज्ञान की लाइट और योग की माइट, दोनों स्थितियां साथ में चाहिए, लाइट और माइट स्वरूप। और उस ज्वाला स्वरूप को प्रज्वलित करने के लिए संगठित रूप में, सामूहिक रूप से एक इशारे के साथ शक्तिशाली स्थिति हो, सर्वशक्तिवान की संतान नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्थिति में सर्वशक्तिवान की संतान हूं नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं शिव शक्ति हूं। ये स्मृति इमर्ज चाहिए। इमर्ज रूप में ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए। तब हम योग ज्वाला प्रज्वलित कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल मुझे क्या करना है, देह और ये देह की दुनिया भूली हुई चाहिए। देह और देह की सारी दुनिया और उस दुनिया में जो भी संबंध है, वस्तु है, पदार्थ है, वैभव है, प्राप्तियां हैं, सब भूले हुए हो। दूसरा, परम शांति और शक्ति संपन्न स्थिति हो। तीसरा, अव्यभिचारी याद हो, निर्विकल्प स्थिति हो, निरंतर निर्विकल्प। चौथी बात, निर्भय और निश्चिंत स्थिति। क्यों ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए, क्यों ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए? अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म करने के लिए। दूसरा, दुखी और अशांत आत्माओं को शांति, सुख, शक्ति, हिम्मत देने के लिए। तीसरी बात, बाबा कहते सबसे बड़ा पेपर है कर्म भोग का। उस कर्म भोग के पेपर को सहन करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। पांचवी बात, अंतिम समय जबकि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, उस विनाश ज्वाला को देखने के लिए। जब चारों तरफ प्रकृति के पांचों ही तत्वों का वार होगा, महाविनाश का दृश्य सामने होगा, उसको कौन देख सकेगा? उसके लिए इस याद की आवश्यकता, जो बाबा मुरलियों में कहते, उस समय आपकी स्थिति मेरवा मौत मलों का शिकार होगी। नाहक सारी दुनिया में खून की नदियां बहेंगी और आप मलूक फरिश्ते, डबल लाइट, अपने उस टॉप की स्थिति में साक्षी होकर के उस दृश्य को देखेंगे। कैसे करनी है? एक है याद, दूसरा है योग, तीसरी है तपस्या। याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, रोज बाबा मुरली में कहते बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो, बच्चे को कभी बाप भूलता है क्या? लौकिक बाप को भूलते हो क्या? पत्नी अपने पति को भूल जाती है क्या? ये इतना बड़ा बेहद का बाबा, उससे बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हो, उस बाप को क्यों भूल जाते हो? क्यों उसकी याद नहीं ठहरती? याद भूलती है। जो याद भूलती है वो ज्वाला स्वरूप की याद में स्थित नहीं हो सकता। योग है निरंतर एक रस, योग का तार सदा जुटा रहे, और जब योग निरंतर है तब वो तपस्या का रूप लेता है। एक रस एकाग्र हो जाता है, एक बाप दूसरा न कोई, एक व्रता में स्थित हो जाता है, तो लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है। वो स्थिति तपस्या की, एक बल एक भरोसा, ऐसे एक के अंत में चले जाते हैं। तो उस ज्वाला का स्वरूप क्या है? एक छोटी सी चिंगारी क्या कर सकती है मालूम? बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा छोटा सा ज्योति का पुंज है, स्पार्क ऑफ लाइट है, अगरबत्ती कितनी छोटी सी उसकी चिंगारी है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती जलती है सारे में खुशबू फैल जाती है। आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो कहीं अगरबत्ती जल रही है, बड़ी अच्छी खुशबू है। उसके गुण से वो अनुभव हो रहा है। दीपक है, दीपक में भी ज्योति है। अपने आसपास थोड़ा रोशनी करता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है, थोड़ा ही प्रकाश देता है। एक चूल्हे की अग्नि है, वो भी अग्नि है, पकाने का काम कर देती है। एक चिता की अग्नि है, मुर्दे को जला देती है। एक झोपड़ी में आग लगती है, सारी झोपड़ी को भस्म कर देती है। मकान को आग लगती है और वो आग फैलती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, शहर को जला देती है। जंगल में भी अग्नि है, वृक्ष जब आपस में टकराते हैं और वो जंगल की अग्नि इतना भयानक रूप ले लेती है, महीनों निकल जाते हैं अग्नि बुझती नहीं है, और जब विश्व विनाश की ज्वाला में प्रज्वलित होगी तब क्या होगा? और उस ज्वाला के लिए एक का संकल्प नहीं, सर्व का संगठित रूप का एक संकल्प चाहिए। राजा के रहने के लिए कोठड़ी नहीं होती है, क्या होता है? किला होता है। और किला भी कैसा, उसकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची जो बाहर से तो कुछ दिखे ही नहीं, और कितना बड़ा एरिया कवर हो जाता है। हमारा ये संगठन का किला स्व को सुरक्षित रखने के लिए पावरफुल ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए, संगठन की मजबूती ज्वाला स्वरूप की याद हो, और उस याद के लिए अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसमें जितना फ्यूल डालेंगे उतना आग भड़केगी, उसकी लपटें उतनी तेज होगी। तो हमारी इस ज्वाला की अग्नि को, उसकी फ्लेम्स को फोर्स देने के लिए फ्यूल कौन सा है? एक बाबा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एक बाबा ही नयनों में बुद्धि में समाया हुआ हो। तो योग ज्वाला प्रकट हो, ये बाबा शब्द बहुत पावरफुल चाबी है, बहुत पावरफुल मंत्र है, मैजिक की है। अनुभव करके देखो, ये जादू की चाबी कैसी है। बाबा कहते दिल से कहो बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, साथ ही हाजिर हो जाएगा। एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसी योग ज्वाला प्रकट करने के लिए लाइट और माइट स्वरूप की निरंतर की स्थिति चाहिए। कब करना है? अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जबकि तमोगुण मर्ज है। सारी सृष्टि का तमोगुण मर्ज है, वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला इस स्थिति को बनाने में बहुत बहुत मदद करता है। और दूसरा समय है नुमा शाम का समय, जब सूर्य अस्त हो रहा है, वो समय ये ज्वाला स्वरूप की याद में वातावरण, वायुमंडल, पशु पक्षी मनुष्य सब सहयोगी बनते हैं। कैसे? इस संध्या काल के समय पंछी सब घर को लौट रहे हैं, पशु घर को लौट रहे हैं, मनुष्य अपने सारा दिन भर का कारोबार कर सब समेत घर जा रहे हैं। सबके अंदर एक ही संकल्प है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो वाइब्रेशंस उनको डिटैच कर रहे हैं। और हमको मदद करते हैं देह और दुनिया को भुलाने में। इसलिए ये स्थिति, घर जाना है, अंदर ये अविरत चलता रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी मनमोहिनी अंतिम 6 महीने सारा टाइम जब भी मिले, किससे भी बात करें, कुछ भी कहें, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो कई बार दादी जी कह देती थी, दीदी अभी कहाँ घर जाना है, आप क्यों रट लगा के बैठे हो, घर जाना है, घर जाना है। कहती नहीं, घर जाना है। बुद्धि दुनिया से बिल्कुल उपरा, सब कुछ करते, सब जिम्मेवारी संभालते, सब कारोबार में आते, बुद्धि उपरा, घर जाना है। तभी वो गीत बना था, आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। तो निरंतर अभी जबकि बाबा हमको इतनी स्मृतियां दिला रहे हैं, बच्चे ड्रामा पूरा हो रहा है, ये याद रहता है अब घर जाना है, अब घर जाना है। लेकिन कैसे जाना है, जैसे है ऐसे तो जा ही नहीं सकते, लेके ही नहीं जाएगा, लेके ही नहीं जाएगा। उसको 5 तत्वों वाली सजनी नहीं चाहिए, उसको अशरीरी सजनी चाहिए, विदेही चाहिए। और जैसी आई थी वैसी ही चाहिए। इसलिए वो घर की स्मृति उस विदेही स्थिति में, निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में स्थित करेगी। कैसे करना है, बहुत काल का, बहुत समय का ये अभ्यास अंत में वो स्थिति बनाएगा कि अंत में कर लूंगी, जब समय आएगा तब कर लूंगी, नहीं। बहुत काल का अभ्यास अंत के समय की उस अंतिम स्थिति में मुझे स्थित करेगा। अंत में ये स्थिति नहीं बना सकेंगी। अभी याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, उस समय जब दृश्य ही भयानक होंगे तो क्या होगा। तो सारा दिन भर एक्यूरेट मेरी दिनचर्या अमृत वेले से लेके रात तक श्रीमत अनुसार हो, कोई भी प्रकार का कूड़ा कचरा, व्यर्थ नेगेटिव, इसका उसका तेरा मेरा कोई बातें यहां नहीं चाहिए। एक्यूरेट बाबा की याद हो, एक्यूरेट ये मन, मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो, इतना जब स्व पर फुल अटेंशन होगा और उसके साथ साथ निरंतर शुभ कल्याण की वृत्ति की हर सेकंड भावना इमर्ज रूप में रहे और आसन हो एक रस अचल अडोल स्थिति का। आसन हिलता नहीं रहे, एक रस स्थिति हो, अभी अभी बहुत अच्छी और अभी अभी कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो मूड चेंज। स्थिति अचल चाहिए, तब हम ये ज्वाला स्वरूप की याद का अनुभव कर सकते और फिर बार बार अभ्यास करते अपनी उस स्थिति को सहज बना सकते। ऐसे हम बाबा के लाइट माइट स्वरूप योगी तपस्वी बच्चे इस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए सारी दुनिया को दुख और अशांति से मुक्त करने के लिए, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए बाबा के राइट हैंड राज ऋषि तपस्वी मूर्त बने। एक ही धुन, एक ही लगन हमारे अंदर चाहिए। दूसरा क्या करता है वो मुझे नहीं देखना है, ना सोचना है। मुझे बाबा ने क्या कहा मुझे वो करना है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। किसी के भी हम शेयर होल्डर्स इसमें नहीं बन सकते हैं। तो स्व की ये शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मुझे स्वयं बनानी है। कोई मुझे सहयोग देगा, मदद देगा, समय देगा, चांस देगा, मेरा प्रोग्राम बनाएगा? नहीं, खुद खुद को अपना प्रोग्राम बनाना है। जब तक स्व पर अटेंशन नहीं दूंगी, बाप दादा की जो आश है उसको पूर्ण करना संभव नहीं होगा। सदा बाबा नैनों में समाया हुआ चाहिए। जो बाबा कहते हैं आपके ये नयन लाइट के दो बल्ब दिखाई दे, तो जो मन में होगा वो नयनों में और चेहरे में होगा ना। जब कोई हलचल होती है उस समय अपने को पूछूं बाबा कहां है, बाबा कहां है। स्थिति अप डाउन होती है पूछूं बाबा कहां है। है निरंतर मेरे साथ, साथ ही साथ है। कहां भेज दिया बाबा को? वो साथ नहीं छोड़ता है, मैं साथ छोड़ती हूं, क्योंकि वो मेरा साथी ही तब है जब मैं अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूं। वो साथ ही तब निभाएगा। उसकी शक्तियों की, संबंधों की प्राप्ति की अनुभूति ही तब करूंगी। अचल अडोल स्थिति ही तब रहेगी। तो वो स्थिति क्या, क्यों, कब, कैसे, सबसे परे की स्थिति है। तो सारा दिन भर अपनी इस दिनचर्या पर जो बाबा ने हम बच्चों को बनाकर दी है, सुबह से लेकर रात तक अमृत वेले सतगुरु बाबा से वरदानों से झोली भरो, फिर गॉडली स्टूडेंट बन करके सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो आज की मुरली ने मुझे होमवर्क दिया, सारा दिन वो मैं होमवर्क करूं। नुमा शाम को डबल लाइट स्थिति में स्थित हो जाऊं, और रात को अपना सारा पोता मेल बाबा को दे दूं। सारा दिन भर कर्म व्यवहार में आते कमल फूल समान कमल आसन पर स्थित होते न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहूं। तो ये दिनचर्या मुझे ये स्थिति ज्वाला स्वरूप की बनाने में बहुत बहुत मदद करेगी। और एक बार जब इसका अनुभव कर लिया तो आत्मा को ये स्थिति खींचेगी, कशिश होगी। अनुभव नहीं किया इसलिए मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। पर यहां इस तपस्वी भूमि में बैठे हैं, चारों तरफ तपस्या के वाइब्रेशंस हैं, और ये वाइब्रेशंस हमको सेकंड में लिफ्ट कर लेते हैं। मेहनत का अनुभव नहीं करने देते। तो अभी ऐसा पावरफुल एक घंटा, साढ़े सात तक एक घंटा ऐसी तपस्या की अग्नि को, ऐसा ज्वाला स्वरूप को इमर्ज करें, और उस ज्वाला स्वरूप की अग्नि में अपने विकर्मों को भस्म होता हुआ महसूस करें। आप कहेंगे कैसे लगेगा, विकर्म भस्म हो रहे हैं, क्या पता, कोई आग थोड़ी जलेगी या? और उसमें ऐसा विकर्म डाला और वो भस्म हो गया। एक माता का अनुभव सुनाती हूं। जनवरी मास में योग के प्रोग्राम रखते हैं, बाबा के कमरे में बैठी थी, बाबा से बातें कर रही थी, मोह बहुत था उसको, तो बाबा को बोलती है, बाबा मेरा बच्चों में बहुत मोह है, क्या करूं। बहुत कोशिश करती हूँ। मेरा ये योग इतना है ही नहीं, ज्वाला रूप बनता ही नहीं, ये योग अग्नि में इस मोह को भस्म कैसे करूं? तो कहा ऐसे बाबा से बातें कर रही हूं और इतने में मुझे सामने दिखाई देता है अग्नि प्रज्वलित हो रही है और इधर से वो बच्चा आ रहा है मेरा और आते आते उस अग्नि में सुहा हो गया। बाबा ने कहा ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर तो ये मोह भस्म हो। योग ज्वाला भी कर, विकार भस्म नहीं होंगे। तो वो स्वरूप अनुभव करो, तो स्थूल अग्नि में भी कर्म भस्म नहीं हो रहे। अग्नि जलती है कैसे पता पड़ता है? सेक आता है ना, सेक आता है। योग ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और ज्वाला स्वरूप का योग है, देह का भान तो होगा नहीं लेकिन अंदर की सूक्ष्म महसूसता होगी, जैसे सारा शरीर वार्म हो गया है, गरम गरम अंदर से उसकी भासना आएगी। ठंडी में भी गर्मी की महसूसता, एक तरफ शीतलता होगी और दूसरी तरफ सेक अंदर ही अंदर महसूस होगा और वो विकर्म भस्म हो रहे हैं। महसूस होगा जैसे यहां से बहुत बड़ा बोझा उतर गया, हल्की हो गई हो। और इस हल्केपन के ज्वाला स्वरूप के लिए मुझ आत्मा में वो पवित्रता की जबरदस्त शक्ति चाहिए, क्योंकि पवित्रता की शक्ति अग्नि का कार्य करती है। आप सबने बाबा का बनने से पहले रामायण सुनी या देखी होगी, पढ़ी होगी। जब राम को वनवास मिलता है तो राम सीता को क्या करते हैं? अग्नि में प्रवेश कराते हैं और सीता की वो सिर्फ परछाई बाहर रहती है, उसी को ही रावण लेके जाता है। और जब सीता को वापस छोड़ा के लाया, रावण को मार करके वापस सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, फिर उसको स्वीकार किया। तो पवित्रता एक अग्नि है, रावण के इतने प्रलोभन होते भी रावण की ताकत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा करके देखे। वो पवित्रता की शक्ति। अशोक वाटिका में उसने रखा हुआ है, वहां से उठा के ले आया, अपने महल में क्यों नहीं रखा उसको? क्यों नहीं रख सका? वो पवित्रता की शक्ति थी। तो पवित्रता एक अग्नि है। लक्ष्मण ने उसको लक्ष्मण रेखा खींची थी, इसके बाहर नहीं जाना। रावण ने पांव रखा तो उसको क्या महसूस हुआ था? अग्नि निकली थी, उस लाइन से अग्नि निकली थी। रावण समझ गया दाल में काला है, पर सीता भोली, परखने की शक्ति की कमी। साधु है लेकिन फरेबी है, नकली है, नहीं समझी, पांव बाहर गई। अंत तक राम के वियोग में गई और अंतिम स्थिति क्या हुई, धरती में समा गई। क्यों क्यों रावण लेके गया, रावण ने क्यों उठाया, लक्ष्मण रेखा को पार किया। कौन सी थी लक्ष्मण रेखा? तो हम सुबह से लेकर रात तक कितनी लक्ष्मण रेखाएं पार करते हैं, मन का जो लक्ष्य है घड़ी घड़ी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, घड़ी घड़ी, संकल्पों से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, संबंध से, उठने बैठने, खाने पीने पहनने चलने सब में, तो गड़ी गड़ी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं। तो किसके पास रहते हैं, किसके पास रहते हैं, आवाज से बोलो तो, रहना किसके पास है? तो रावण बहुत प्रिय है, नहीं आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे उसका साथ छोड़ देंगे। हाँ, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे तो योग ज्वाला कवच रहेगी, रावण नजर भी उठा के नहीं देख सकेगा, उसकी आंख उठाने की हिम्मत नहीं। लेकिन लक्ष्मण रेखा के बाहर गए तो रावण के दरवाजे खुल गए, उसको फुल राइट्स मिल गए अपना बनाने के। तो जितनी पवित्रता है उतनी एकाग्रता है, और एकाग्रता ही वो पवित्रता की शक्ति ही, वो स्थिरता ही अग्नि प्रज्वलित करती है। आप सबने छोटे छोटे जब होंगे ना तो एक खेल किया होगा, मालूम है कौन सा, मालूम है कौन सा सबने किया होगा, वो नीचे कागज रखते हैं ऊपर लेंस रखते हैं, हा? और फिर उसको जलाते हैं। कैसे जलता है सूर्य, अगर लेंस को हिलाती रहूं तो लेंस स्थिर चाहिए, एकाग्र चाहिए, तो वो अग्नि बनेगी। मेरा बुद्धि रूपी लेंस, मन की एकाग्रता होगी तो अग्नि प्रज्वलित होगी। ऐसी अंदर की सूक्ष्म पवित्रता की शक्ति के साथ तपस्या चाहिए। एक साधु बहुत तपस्वी, ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते, परंतु उनमें क्या होता है, क्रोध बहुत होता है नहीं? तो ऐसे ही एक साधु तपस्वी तपस्या करके और जंगल से जा रहा था, बगुले उड़ रहे थे, एक बगुले ने उसके सिर पर बीत कर दी, बहुत जोर से गुस्सा आया, ऐसी तीखी नजर से उसको देखता है, बगुला भस्म हो गया, नीचे गिर गया। और वहां से वो तपस्वी नजदीक के गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, तो एक घर के दरवाजे खुले थे और वो माता अपने पति को भोजन करा रही थी। खड़ा हुआ तो समझ गई माता की भिक्षा के लिए आया है। तो उसने कहा थोड़ी देर रुको, पति को भोजन खिला करके भिक्षा देती हूं। उसको अपना अपमान लगा, तीखी नजर से देखता है उसको। तो कहती है मैं वो बगुला नहीं हूं जिसको तो भस्म कर सके। एकदम हैरान हो गया, ये तो वहां थी नहीं, इसको कैसे पता पड़ा। उसके अंदर संकल्प चलने शुरू हुए तो माता कहती है तू सोच रहा है मुझे कैसे पता पड़ा, जा इस गांव में ना फलाने चमार की दुकान है, वो तुझे बताएगा। खैर भिक्षा ली और भिक्षा लेकर के वो उस दुकान की तरफ चला, चप्पल बना रहा था। उसको कहता है तुझे उस माता ने भेजा है। उसका मगज थनक गया कि मैंने इतनी तपस्या की है और उस तप की प्राप्ति, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा, एक व्रता, जिस कार्य को कर रहे हैं एकाग्रचित होकर, एक में बुद्धि योग रखते हुए, उसको करेंगे एक व्रता होकर, तो बाबा कहते योग से सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसी वो पवित्रता की शक्ति जो जरा भी व्यर्थ संकल्प तो छोड़ो विकल्प भी ना हो, निर्विकल्प स्थिति हो। तो हम संकल्पों को कैच कर सकते और अपने संकल्पों को भेज सकते। तो सकाश काम करेगा। तो अभी करें एक घंटा तपस्या।
अग्नि और जली योग की ज्वाला जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला लगी तपस्या की अग्नि गति पर हुआ नियंत्रण संस्कार परिशोधन शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन चिंतन लगा चमकने चित की चंचलता कुंभलाई निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला वन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला लगी तपस्या की अग्नि अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे भव भय बंध मिटेंगे मैपन के सब अस्थि गलेंगे पंच तत्व परिवर्तन होंगे निज को जब बदलेंगे सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला लगी तपस्या की अग्नि
ओम शांति। तपस्या भूमि पर शक्तिशाली तपस्या के स्पंदन मुझ आत्मा को भृगु जी के मंदिर चमकती हुई मस्तक मणि की महसूसता करा रहे हैं। इस चैतन्य मणि का तेज कर्म इंद्रियों को शांत शीतल कर रहा है। मन और बुद्धि सर्वशक्तियों के स्रोत परम ज्योति बिंदु होते जो सिंधु है उस पर एकाग्र हो गई है। और मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर आसीन हो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ साथ महसूस कर रही हूं। सर्वशक्तिवान बाबा लाइट और माइट किरणें मुझ आत्मा को दे रहे हैं। महसूस कीजिए सर्वशक्ति divine. Shiv Bab Ki. In Shakti Shali Kiranon ko. स्वयं में समाते जाइए, समाते जाइए, समाते जाइए, और गहरे चले जाइए अंदर. माइट की ये किरणें छत्र छाया बन गई है. चारों ओर लाइट का कवच बन गया है. सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तिशाली किरणें आत्मा के अंदर बहुत गहरी जा रही. बहुत गहरी अंदर किरणें पहुंच रही है. एक एक करके ये लाइट माइट स्वरूप किरणे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म कर रही है. महसूस कीजिए एक एक पुराने संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं. सर्वशक्तिमान निकल रही है. क्षणों में खो जाइए, खो जाइए। लाइट और माइट स्वरूप की अनुभूति लाइट हाउस माइट हाउस बना रही है।
खूबसूरत बना दिया।